उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर इस्कान मुंबई में प्रातः रविवार के श्रीमद् भागवत के सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद जो भगवान श्री कृष्ण का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है, सबसे बड़ा 90 अध्याय का ये स्कंद, उसके अंतर्गत तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के प्रकट्य के विषय में 33वें श्लोक में भगवान जब कंस के कारागृह में वसुदेव और देवकी के सन्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, प्रकट होने से पूर्व अभी तक भगवान देवकी के उदर में थे तो ब्रह्मा शंकर नारद चंद्र इंद्र आदि देवताओं ने गर्भ स्तुति की। देवता जैसे जाने लगे शुभ मंगलमय समय आ गया। ये समय कौन सा है अगर आपसे कोई पूछे तो, ये समय है सातवां मनवंतर 28वीं चतुर्युगी के द्वापर का अंतिम चरण, 28वीं चतुर्युगी सातवां मनवंतर और उसका अंतिम चरण भाद्रपाद का महीना, शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि, बुध का वार, रोहिणी नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र का भी दूसरे चरण में भगवान वसुदेव और देवकी के यहां प्रकट हुए हैं। और भी दूसरे चरण में नाम आता है वस से, तो नाम है वसुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण नाम, और ये चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। और इनको अचानक देखा वसुदेव जी ने, अद्भुत बालकम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा आयुध में हाथ में है, तो वसुदेव ने उनको प्रार्थना की। वसुदेव की प्रार्थना के बाद माता देवकी ने प्रार्थना की, उसके बाद भगवान बोलने लगे। तो आज जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं 32वें श्लोक से भगवान बोल रहे हैं, जन्म लेते ही भगवान बोल रहे हैं और अपने माता पिता को संबोधन कर रहे हैं। तो कौन सा सिद्धांत स्थापित हो रहा है, भगवद गीता के कौन से श्लोक का सिद्धांत स्थापित हो रहा है यहाँ? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति माम इति सो अर्जुन। तो भगवान का जन्म साधारण नहीं है, अद्भुत बालक के रूप में प्रकट हुए हैं और प्रकट होते ही माता पिता ने उसकी प्रार्थना की है और भगवान ने संबोधन करना शुरू किया है। तो आज भगवान अपने माता पिता को संबोधन कर रहे हैं तो आइए तो इस श्लोक का पाठ करते हैं, 33वां श्लोक। किसके वचन है? भगवान के। युवान वै ब्रह्मणादिष्टो प्रजा स्रगे यथा ततः संयमेन्द्रिय ग्रामम् ते पाथे परमं तपः। युवान् वै ब्रह्मणादिष्टो प्रजा सर्गे यदा ततः संयमेन्द्रिय ग्रामम् ते पाथे परमं तपः। युवान् वै ब्रह्मणादिष्टो प्रजा सर्गे यदा ततः संयमेन्द्रिय ग्रामम् ते पाथे परमं तपः। युवान् वै ब्रह्मणादिष्टो प्रजा सर्गे यदा ततः संयम्येन्द्रिय ग्रामम् ते पाथे परमं तपः। युवान् वै ब्रह्मणादिष्टो संयमेन्द्रिय ग्राम ते पाथ भगवान् तपः। यवाय परमणादिष्टो प्रवासर्गे यदा तपः संयमेन्द्रिय ग्रामम् ये तामे परमं तपः। युवान् वै ब्रह्मणादिष्टो प्रजा सर्गे यदा ततः संयमेन्द्रिय ग्रामम् ते पाथे परमं तपः। वैष्णवी युवान् वै ब्रह्मणादिष्टो प्रजा सर्गे यदा ततः यमेन्द्रियः ग्रामम् ते पाथ परमं तपः। युवान् वै ब्रह्मणादिष्टो प्रजा सर्गे यदा तपः यमेन्द्रियः ग्रामम् ते पाथे परमं तपः। युवान का मतलब है आप दोनों। अब भगवान संबोधन कर रहे हैं अपनी माता पिता को के आप दोनों युवान। वही निश्चित रूप से ब्रह्मण आदिष्टो, ब्रह्मा के द्वारा जब आपको आदेश दिया गया, ब्रह्मण आदिष्टो, ब्रह्मा जी ने जब आपको आदेश दिया, पहले जब दिया था, काहे के लिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था? प्रजा सर्गे मतलब संतान की उत्पत्ति करने के लिए। सर्गे का क्या अर्थ होता है वैसे? सृष्टि। तो कितने प्रकार का सर्ग होता है? 16वें अध्याय भगवत गीता में लिखा है दिवो सर्गो लोके अस्मिन। दो प्रकार का सर्ग होता है दुनिया में, देव असुर एवच, एक देवताई संपन्न और एक असुरी। तो यहां जो सर्ग है वो कौन सा है? देवी सर्ग है। ब्रह्मा जी ने आदेश का मतलब, अगर संतान उत्पन्न करना है जो देवी गुणों से संपन्न हो, भगवान का भक्त हो, तो पहले तो आदेश होना चाहिए। ब्रह्मण आदिष्ट हो मतलब ब्रह्मा जैसे देवता अथवा पूजनीय जो ब्रह्मा की विशेषता क्या है, चारों वेदों का देने वाला है। इसका मतलब वेदी वेद के विधान से नाम से प्रभुपाद जी के तात्पर्य है, जो गर्भदान संस्कार आदि करके उसके बाद जो संतान उत्पन्न करते हैं उसमें पहले आदेश होना चाहिए किसी महापुरुष का, ब्राह्मण साधु संत का, के संसार में कोई अच्छा देवता पुरुष पैदा होना चाहिए, भक्त पैदा होने चाहिए। तो ये स्वर्ग कौन सा हो गया? दैवी स्वर्ग। और इसके विपरीत जैसे मन चाहे वैसे कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चा पैदा करे तो उसको क्या कौन सा स्वर्ग कहते हैं? असुरी स्वर्ग। और असुरी स्वर्ग का उदाहरण कौन है? हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु। क्योंकि तीसरे स्कंद में दोनों स्वर्गों का दर्शन है। एक तरफ तो हिरण्याकश हिरण्याकशिपु की सृष्टि है और दूसरे तरफ कपिल देव और स्वयंभू मनु और शत्रुपा की सृष्टि है, वो देवी सृष्टि है, और हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु की असुरी सृष्टि है। तो वहां क्या कारण थे कि असुर पैदा हुआ? एक तो पति के आदेश का पालन नहीं किया दिति ने, यहां आदेश का पालन हो रहा है, वहां आदेश का पालन नहीं हुआ। वहां समय संध्या काल का था और कश्यप जी पूजा में बैठे थे, आदिति की इंद्रियां संयम में नहीं थी, आदि नहीं दिति की, वो कामवश थी। और उस समय देवता परम देव महादेव का अनादर हुआ तो परिणाम क्या हुआ? असुरी संतान पैदा हुआ। तो ये इसमें शिक्षा जो हमको लेनी चाहिए प्रचार की दृष्टि से जीवन में प्रैक्टिकल, वो है कि सर्गे प्रजा, सर्गे प्रजा का अर्थ है संतान की उत्पत्ति के लिए आदेश लेना चाहिए, गुरुजनों से आदेश लेना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत संघ में सर्ग उत्पत्ति संतान उत्पन्न के लिए ग्रस्तों के लिए आदेश है, 50 माला का जप करो, दोनों इंद्रियों को संयम में करो, गर्भदान संस्कार करो, तो एक नियम है। तो यहां लिखा है प्रजा सर्ग, आपको जब संतान उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया जब आपको ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, यदा का मतलब जब दिया था, तत् है मतलब उसके पश्चात। तो पहले तो मिला आदेश, उसके पश्चात क्या किया? आप लिखा क्या? संयम इंद्रिय ग्रामम, संयम किया इंद्रियों को, किसको? इंद्रियों के ग्राम को। ग्राम का मतलब वैसे गांव होता है ना, तो इंद्रियों के ग्राम का मतलब क्या? कितने इंद्रियों को संयम किया? सारे इंद्रियों को संयम किया। कितनी इंद्रियां जानते हैं आप? हाँ, इंद्रियों के लिए संस्कृत में शब्द क्या है? कर्ण। क्या है? कर्ण, बाहर करण अंतःकरण। एक बाहर करण इंद्रिया है, एक अंतःकरण इंद्रिया है। बाहर करण इंद्रिया है 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया। अंतःकरण में है मन बुद्धि अहंकार और दूषित चित्त, इन सब को संयम में रखा। इन सब को संयम, किस चीज से संयम में रखा? इंद्रियों को संयम में रखने के लिए क्या किया? कोई पूछे ना कैसे इंद्रिया संयम में रखी, तो नीचे क्या लिखा है? ते पाथे परमम तप, उन्होंने इस कार्य को करने के लिए, क्या कार्य करने के लिए? संतान की उत्पत्ति करने के लिए ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार जब उनको कहा कि अपने संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने अपने इंद्रियों को संयम में करने के लिए परम तप किया। देखो तप के आगे परम नहीं लगा, लिखा होता ना तो तप असुरी तप भी नजर आ जाता। हिरण्याकश ने भी तपस्या की थी, वो असुरी तप था ना, और ये मुंबई वाले भी रोज तपस्या कर रहे हैं, हिरण्याकश के भी चाचा के तरह हाथ ऐसे दोनों लोकल ट्रेन में टंगे हुए 3 घंटे जाते हैं, जाते हैं कि नहीं आते? ये तपस्या है कि नहीं? तो ये तप है, परम तप नहीं है। परम आगे जो शब्द है उसका बड़ा महत्व है, परम की प्राप्ति के लिए तप किया। परम तप का मतलब बहुत बड़ा है। और ऐसे परम तप के लिए दूसरा कोई ऐसा तप है जिसके लिए आगे भी कोई शब्द ऐसे परम जैसा लगा हुआ है, ऐसा कोई तप याद आता है? जहां तप की परिभाषा बताई गई है, मैं संकेत कहता हूं, 5वें स्कंद में है, ऋषभ देव की शिक्षा अपने पुत्रों को, तपो दिव्यम पुत्र का, वहां तप को दिव्य लिखा है, वो भी वो किसको उपदेश दे रहे हैं? अपने। और कितने पुत्र हैं ऋषभ देव के? और बड़े पुत्र का नाम क्या है? और इससे पूरे भारतवर्ष को शिक्षा दी गई है, क्योंकि भारत के नाम से ही भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष के लोगों को शिक्षा वहां क्या है? तपो दिव्यम पुत्र का, पुत्रों दिव्य तपस्या करो। पहले पूछा बेटों से, बेटा आप करोगे क्या? बोला बड़े होगे क्या करोगे? बड़े होगे बस राजा हो जाएंगे। बोला राजा बन के क्या करोगे? बोला खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। यही तो कहेगा, सब लोग तो यही कहते हैं। तो ऋषभदेव ने कहा बेटा ये तो कुत्ते बिल्ले गधे भी करते हैं। हाँ, तो बच्चों ने बोला फिर? बोला क्यों करोगे? बोला सुख के लिए करेंगे। बोला ये तो गधे बिल्ले कुत्ते भी कर रहे, तुम करोगे तो अंतर क्या हो गया? बोला नहीं, तुम दिव्य तप करो। बोला क्यों? सुख मिलेगा? बोला अनंत ब्रह्म सुख के लिए करो, तुच्छ इंद्रियों के सुख के लिए तप मत करो, अनंत ब्रह्म सुख के लिए तप करो। तो यहां परमम तप का परिभाषा समझनी चाहिए, वो तपस्या जिसके द्वारा परम पद की प्राप्ति हो, परम लक्ष्य की प्राप्ति हो, परम पुरुष भगवान की प्राप्ति हो, हा? और परम साधन भक्ति की प्राप्ति हो। तो परम जो लगेगा इन सब चीजों के साथ लगेगा। तो अब श्लोक का अर्थ क्या समझ में आ रहा है? श्लोक का अर्थ समझ में आ रहा है? ये सारे शब्द आपकी भाषा में है कि नहीं है? देख लो अभी, एक आधे शब्द को छोड़ को सब है कि नहीं? अब इस श्लोक का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी के अनुवाद से पढ़ते हैं, ठीक है? श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब भगवान ब्रह्मा ने तुम दोनों को सनातन उत्पन्न करने का आदेश दिया। अब जितने श्लोक में मैंने अर्थ पढ़े हैं अभी अनुवाद में, इसमें आप देख सकते हैं कौन सा शब्द कहां है, देखा है? जब भगवान ब्रह्मा ने, या प्रभुपाद ने कहा भगवान ब्रह्मा ने, भगवान ब्रह्मा लिख दिया, वह शब्द भगवान ब्रह्मा तो है नहीं, तो यहां भगवान ब्रह्मा लिख दिया, लॉर्ड ब्रह्मा। लॉर्ड को अंग्रेजी में प्रभुपाद ने लॉर्ड लिखा है, लॉर्ड को हिंदी में भगवान बना दिया, ठीक है? ब्रह्मा को भगवान कहा जाता है, शंकर जी को भगवान कहा जाता है, गुरुदेव भगवान कहते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी श्री भगवान नहीं कहते। और भगवत गीता में जब श्री कृष्ण बोलते हैं तब क्या लिखा है? तो उसमें भगवान वाचन लिखकर श्री भगवान क्यों लिखते हैं? क्यों? ये बाकी सारे भगवान है, इनके साथ श्री नहीं है। श्री किसको कहते हैं? लक्ष्मी को, राधा को। तो वो भगवान राधापति लक्ष्मीपति भगवान बोल रहे हैं, और ये जो भगवान बोल रहे हैं उनके सेवा में है, इसलिए उनको भी भगवान जैसा सम्मान दिया जा रहा है। भाई गुरुदेव को भी तो भगवान कहते हैं ना, किस बात में? सृष्टि कर सकता है गुरु जी? सृष्टि करता है, दुनिया बनाता है, दास लीला कर सकता है, तो फिर किस बात में? किस बात में भगवान के समान है गुरुदेव? साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्र, सब शास्त्र कहते हैं गुरु को हरि के समान समझो, किस बात में? इसे इस लाइन के बाद फिर क्या पढ़ते हैं? किंतु, किंतु है ना, किंतु का मतलब क्या है? परंतु। हाँ, किंतु परंतु, परंतु का मतलब नहीं है भगवान नहीं है, क्योंकि दूसरी लाइन कहती है भगवान नहीं है, तो फिर कौन है? भगवान का बहुत प्रिय है। भगवान नहीं है, भगवान का बहुत प्रिय है, तो भगवान के समान किस बात में है? एक काम में। प्रभुपाद जी के नाम के आगे क्या लिखा है? कृष्ण कृपा मूर्ति। कृपा करने में गुरु भगवान से समान नहीं, भगवान से मान है। कृपा करने में गुरु भगवान के समान नहीं, भगवान से महान है। क्योंकि कृपा करना गुरुदेव का काम है, वैष्णव का काम है। भगवान कृपा करते हैं किसी किसी के ऊपर। वो भगवान की कृपा के लिए रसा भक्ति सामर सिंधु में लिखा है, ऑनररी किसी को डॉक्टरी की डिग्री दी जाए, पीएचडी, कितने लोगों को ऑनररी मिलती है? लाखों में एक को भी नहीं मिलती है। तो भगवान की कृपा ऐसे नहीं होती है, लेकिन साधु संत वैष्णव की कृपा भगवान की प्राप्ति के लिए सरलता से प्राप्त होती है। तो ये भगवान ब्रह्मा ने, यहां लिखा भगवान ब्रह्मा ने, तो इसको भी थोड़ा समझ लेना चाहिए कि भगवान ब्रह्मा ने का मतलब क्या है। भगवान के प्रिय है, ब्रह्मा जी भगवान के प्रिय है, और भगवान के ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी कहें तो दो तीन चीजें ब्रह्मा जी के बारे में भी बोल देनी चाहिए। ब्रह्मा जी गुण अवतार है, अवतारों में सृष्टि करने के रजुगुण के अधिपति गुण अवतार है, ये तो हो गया उनका सृष्टि के कार्य में काम। हमारे लिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संप्रदाय के, वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और ब्रह्मा जी भागवत का नित्य पाठ करते हैं, ये भागवत संप्रदाय के प्रवर्तक है, और यही ब्रह्मा जी चैतन्य महाप्रभु की लीला में हरिदास ठाकुर बन के नाम आचार्य का काम भी किया है। तो ये ब्रह्मा जी का आदेश कितना महत्वपूर्ण है ये समझना चाहिए ना, कि ब्रह्मा जी ने अगर संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तो कोई संतान साधारण नहीं होगा। तो आदेश लेना चाहिए तो ऐसे विधि विधान से लेने से बहुत बड़ा लाभ होता है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब भगवान ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, ब्रह्मा आदिष्टो, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया युवान आपको सर्गे सर्ग संतान उत्पन्न करने का, तो तुम दोनों ने पहले अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए कठोर तपस्या की। परम को कठोर लिखा है, हिंदी में कठोर नहीं लिखना चाहिए, दिव्य तपस्या की लिखना चाहिए। आपने कठोर तपस्या तो हिरण्यकश्यपु ने भी की थी, और बहुत बड़ी भारी तपस्या थी। आपने बहुत तपस्या की। ये अनुवाद अब ठीक है, समझ में आया श्लोक को? अब श्लोक आपको ये लिखा हुआ सीधा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो श्लोक जब पढ़े तो एक मिनट लगा के नीचे शब्द अर्थ देख के प्रभुपाद जी का, और इसको ऐसे समझे कि अनुवाद में शब्द कौन सा कहां रखा हुआ है, अब इसमें कौन सा शब्द कहां रखा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आप समझोगे कि आपने समझ के पढ़ा है। अब अनुवाद के बाद प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। यहां पर ये आदेश है, यहां पर ये आदेश है, इंस्ट्रक्शन है, अंग्रेजी में लिखा इंस्ट्रक्शन है। आदेश को क्या बोलते हैं? ऑर्डर। और इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? निर्देश। हाँ, ये यहां निर्देश है, यहां ये निर्देश है, इसका मतलब है कि एक सुझाव दिया गया है कि ऐसे करना चाहिए, कि संतान उत्पत्ति करते समय इंद्रियों का किस तरह उपयोग किया जाए, कैसे इंद्रियों का उपयोग किया जाए संतान उत्पन्न करने के समय, इस बात का यह निर्देश है। वैदिक नियमों के अनुसार संतान उत्पन्न करने से पहले इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये निर्देश में लिखा है कि संतान उत्पन्न करने से पहले इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए, और फिर सुझाव देते हैं ये नियंत्रण गर्भदान संस्कार के माध्यम से पूरा होता है। ये गर्भदान संस्कार भारतीय संस्कृति को प्रायः भूल गया, समाप्त हो गया है प्रैक्टिकली। ये कृष्ण भावना अमृत संघ के आंदोलन में प्रभुपाद जी ने ऐसे तात्पर्यों के द्वारा लोगों में जागृति लाए। अभी भी भारत में इसका हमने इतना प्रचलन नहीं देखते हैं, लेकिन पाश्चात्य देशों में रशिया आदि में और इन स्थानों में जाते हैं तो वो आते ही पहले कहते हैं हमारा गर्भाधान संस्कार कराओ, और हमें शर्म आती है कि भारत वालों ने छोड़ दिया और ये पाश्चात्य देशों में होने शुरू हो गया। तो गर्भाधान संस्कार पहला संस्कार है 16 संस्कारों में, ये नीम है असल में सृष्टि पैदा करने की। तो गर्भाधान संस्कार में क्या करना होता है वो तो विधान, ब्राह्मण को पूजा करा के भगवान को आराधना करनी पड़ती है कि अब हम गृहस्थ के धर्म को पालन करते हुए संतान की उत्पत्ति की प्रार्थना करते हैं, भगवान कोई ऐसा आत्मा जो आपका भक्त हो जिसको इस संसार के अंदर कोई दिव्य कार्य करने के लिए आप भेजना चाहो तो हमारे को उसका माध्यम बनाओ। इसलिए हम कभी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम भगवान के सृष्टि की लीला के कार्य में सहयोग है। भाई भगवान सृष्टि करते हैं ना, ये भगवान की सृष्टि लीला है ना, और भगवान की सृष्टि भगवान करते क्यों है, भगवान क्यों सृष्टि करते, व्हाई ही क्रिएट द वर्ल्ड, ये उनकी करुणा है, ये भगवान की करुणा है सृष्टि करना, और विशेष रूप से मानव सृष्टि भगवान की बहुत बड़ी करुणा है, क्योंकि प्रलय काल में सोए हुए जीवों को जगा के एक और मौका देते हैं, एक और अवसर देते हैं कि भगवान का भजन करके भगवान के धाम आ जाओ। अगर एक बार ही नरक में पड़ा डालने और सारी बाकी अनंत काल तक नरक में पड़ा रहे, एक बार स्वर्ग में डाल दें उधर ही पड़ा रहे, तो ये तो न्याय नहीं हुआ ना। मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाई पिता भगवान क्या है, सबका पिता है ना, तो गलती हो गई तो सुधरने का मौका देना चाहिए ना। तो प्रलय काल में जीव जब कहां जाते हैं सारे जीव प्रलय काल में, भगवान के गर्भोदक्षाई के पेट में, तो जो जिसके पेट से पैदा होता उसी का बच्चा होता है कि किसी और का होता है? हाँ भाई, जिसके पेट से पैदा होते उसी का बच्चे है ना कि नहीं? तो सभी तो पैदा भगवान के पेट से हुए हैं, तो भगवान के बच्चे हुए कि नहीं? अब भगवान कहता है कि मेरी मेरी सेवा करो, तो गलत कह रहा है क्या? अरे तो कहते तुम मेरे बच्चे हो, मेरी सेवा करो, ये गलत है क्या? कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं, ये कृष्ण हर बार भगवत गीता में कहते हैं मेरे को, मैं मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी सेवा करो, ये बस इतना सेल्फिश है कि अपनी सेवा के लिए कहता है और कुछ नहीं कहता है। तो हम उनको कहते हैं भाई देखो तुम्हारे बेटे हैं, तुम क्या कहते हो, तुम्हारी सेवा करें, ये तुम्हारी इच्छा है कि नहीं? बोला हम तो चाहते हैं हमारे बच्चे हमारी सेवा करें। तो कृष्ण सबका पिता है कि नहीं है? है। तो फिर वो कहता है गलत कौन सा कह रहा है, ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा है? और फिर कोई बहुत अड़ियल होता है तो हमसे उससे पूछते हैं तुम क्या कहते हो, तुम्हारी पत्नी तुमसे प्रेम करे, तुम्हारी सेवा करे? आगे कुछ नहीं पूछते, इतना ही पूछते हैं। तो वो कहते हैं इसमें क्या बात है, वो तो मेरी सेवा मेरी पद। अरे वो जगत का पति है भगवान, जगत का नाथ है, और हम सब उसकी संतान है। संतान क्या, उसकी सेवा के लिए उत्पन्न किया है, वो कह रहा है मेरी सेवा को, तो कौन सा गलत कह रहा है? गलत कह रहा है क्या? तो फिर हम सब भगवान के उधर से उत्पन्न हुए हैं, भगवान के पेट में सब जल चले जाते हैं प्रलय के काल में, और कहां जाएंगे? कोई जगह है कहीं जाने की? मरने के बाद भी रहने की जगह भगवान के पेट में ही है। हाँ नहीं? तो फिर भगवान उनको जगाते हैं बाहर निकाल, एक सृष्टि करके एक अवसर देते हैं, एक चांस देते हैं, एक मौका देते हैं कि सुधर जाए और वापस हमारे घर लौट आए। तो इस कार्य में ग्रस्त आश्रम सहयोगी है, क्योंकि सृष्टि कहां से होगी, ग्रस्त के पास ही तो होगी ना। तो फिर उनको अच्छी सृष्टि करने के लिए भगवान को प्रार्थना करना गर्भधान संस्कार है। तो जो ग्रस्त में जाए उसको इस संस्कार को कभी भूलना नहीं चाहिए, इस संस्कार से ही शुरुआत होता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं भारत में विविध, अब प्रभुपाद जी इंद्रिय संयम के अभाव का कारण और जो प्रचलित प्रक्रिया है वो बता रहे हैं। अब भारत में लिख रहे हैं दसम स्कंद की तात्पर्य लिखते समय प्रभुपाद जी, ये तो 76 और 7 का समय था, तो भारत का उद्देश्य नाम भारत का लिख रहे हैं, ये दुख से लिख रहे हैं कि ये भारत में नहीं होना चाहिए था। वहां और तो संस्कृति में हो सकता है, पाश्चात्य देशों में हो सकता है, लेकिन यहां गर्भाधान का संस्कार का विधान है वहां भी नहीं हो रहा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं भारत में विविध यांत्रिक विधियों से गर्भ निरोध करने पर बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ है। अब ये कब प्रभुपाद ने लिखा है, 77 का समझ लो, 77 में प्रभुपाद जी लिखते हैं भारत में गर्भ निरोध, इसका मतलब गर्भ निरोध का मतलब सब समझते हैं कि बच्चा पैदा नहीं हो लेकिन भोग चालू रहे, उसके लिए कई दवाइयां निकली है, कई ऑपरेशन निकली है, तो ये इंद्रियों को संयम करने के बिल्कुल विपरीत हैं। दुनिया में इस वक्त दो सबसे बड़े ऐसे पाप हो रहे हैं दुनिया पूरे विश्व में, जिसके कारण दुनिया में कभी शांति होने वाली नहीं है, और ये आपत्तियां जैसी अभी कोरोना की आई है, ये कोरोना वायरस जैसी आपत्तियां संसार में प्रकृति का सामूहिक कर्म के फल के रूप में आती रहेंगी। दो कौन से बड़े महापाप हो रहे हैं, एक गौवध और एक भ्रूण हत्या, बच्चे को जन्म लेने से पहले मारने की प्रक्रिया, और बहुत भगवान को प्रिय और आध्यात्मिक प्रगति में सहायता करने वाला, अरे गाय को तो पशु कहने के ऊपर कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए, मैया यशोदा से भी नाराज हो गए, पांच साल के कृष्ण हुए तो कहने लगे, अरे बछड़े चराने में मुझे लज्जा आती है, मैं बड़ा हो गया, आप गैया चराने जाऊंगा। बछड़े चराने तो चार साल तक चले गए, तब तक वत्स पाल थे, फिर कहा नहीं है मैं गोपाल, मैं अब गैया चराने जाऊंगा, छोटे बछड़े लेके जाता हूं, मुझे लज्जा आती है, मैं बड़ा हो गया। नंद बाबा ने कहा इतने बड़े बैल ये गैया कैसे संभालोगे। भगवान ने बांसुरी बजाई और सभी बहुत संयम में आ गए, बोला मैं चला लूंगा, बोला मुहूर्त तो निकालना पड़ेगा, गैया चराने के लिए भी मुहूर्त निकालने की बात हुई। तो सांडल्य ऋषि गुरु आ गए इनके, सांडल्य ऋषि गुरु हैं नंद बाबा के, और यदुवंशियों के गुरु हैं गर्ग आचार्य। तो गुरु, वो गुरु जी आ गए तो नंद बाबा ने से पूछते हैं कि कृष्ण क्या पूछ रहे हैं। बोला ये कह रहे हैं गैया चराने जाऊंगा, मैंने कहा मुहूर्त निकालूंगा। वो तो गर्भ आचार्य बस निकाला पंचांग, बोला ये बस गोपाष्टमी कल नहीं कल ही है। और नंद बाबा बोलता है गुरु शिष्य दोनों मिले हुए अभी काम चलेगा, हम तो चाहते हैं कुछ दिन रुक जाए, बच्चा छोटा है, क्योंकि बछड़े चराने जाते थे दोपहर में वापस घर आ जाते थे, भोजन साथ नहीं ले जाते थे, तो मैया कहती थी वापस आ जाएगा दोपहर में, और गैया चरा जाएगा तो शाम तक नहीं आएगा, गैया चराने के लिए तो शाम तक रहना पड़ेगा जंगल में। एक ही बार, सिर्फ एक ही बार बछड़े चराते हुए घर से भोजन लेके गए थे, लेके एक बार ले गए थे भोजन, कौन से दिन, जिस दिन उन्होंने कहा आज वन में भोजन करेंगे। क्यों, अब ये भगवान की लीला कौन सी उम्र की है, चार साल की। हाँ, तो भगवान को क्या है, सब लोग कहने लगे ये वो माखन चोर है, इधर से जाए तो कहे माखन चोर, वो कहे दही का चोर, वो कहे दूध का चोर। भगवान ने कहा मुझे इतना चोर के नाम से इन्होंने प्रसिद्ध कर दिया है, अब मैं ऐसी कोई लीला करूं, चार वेदों को जानने वाला ब्रह्मा जी अगर चोर बन जाएगा तो मैं छोटा चोर रह जाऊंगा ना, तो काम ही ऐसा किया जाए कि ब्रह्मा जी ही चोर बन जाए, मैं तो केवल मक्खन खाता हूं वो गाय से मिलता है, ये तो बछड़े ही चुरा गया और ग्वाल वाल ही चुरा के चला गया, तो महाचोर हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, महाचोर हो गया। तो उस एक दिन बछड़े चराते हुए जंगल में भोजन किया था, तो गैया चराने के लिए बड़ा उत्सव हुआ, मतलब तैयारी होने लगी, गैयों को सींगों में सोने के, सींगों में सोने का पत्रे चढ़ाए, खुरों के ऊपर चांदी चढ़ाई, पूछ में हीरे मोती मणक माणक डाले, बड़े बड़े रेशमी कपड़े, पूजा हुई, और बच्चे तैयार होके नए कपड़े पहन के कल गैया चराने जाए, और कृष्ण तैयार होके आया, पगड़ी बांध ली और मोर पंख लगा दिया, लकुड़ी हाथ में लाठी ले ली, मैया ने यहाँ एक रक्षा का बड़ा सूत्र बांध दिया कि बच्चे को कुछ हो न जाए, फिर दो सैंडल लाके सामने रख दिए, बेटा चप्पल पहनो, जंगल में जाओगे शाम तक घूमना पड़ेगा, कांटा लगना ना पता किनकर लग न जाए। तो कृष्ण कहता मैया फिर गैया के जूते कहां। तो मैया कहती है गैया तो पशु है, कृष्ण सारे मुकुट मुकुट फेंक दिए कि गैया को पशु क्यों कहती हो, गैया हमारी माता है। भगवान नाराज हो गए, और इतने नाराज हो गए मैया कहने लगी यशोदा कि नहीं नहीं बेटा नहीं, गैया को पशु नहीं कहूंगी, गैया हमारी माता है। और ये समाचार गैयाओं को मिल गया कि कृष्ण चप्पल पहनने के लिए मना कर रहा है, और माता जी को गैया कह रहे हैं कि गैया हमारी माता है और चप्पल नहीं पहनेगा क्योंकि हम नहीं पहनेंगे। और गैया जितनी बंधी हुई थी गौशाला में, सारी गौशाला से भागी, पूरे ब्रज के अंदर जितनी मिट्टी थी कंकर थे पंथर थे अपने खुरों से पीस पीस के ऐसी मिट्टी कर दी। कृष्ण को 11 साल तक गैया चराते हुए कभी पांव में कांटा कंकर नहीं लगा। तो ये ब्रज की रज बहुत महत्वपूर्ण गायों ने ऐसी तैयार करके रखी थी। तो यहां क्या बात कर रहे थे, सृष्टि, सृष्टि करने से पहले संयम करना पड़ता है, और भारत में संयम का अब वो 676 में प्रभुपाद 77 में लिख रहे हैं कि ऐसे हो रहा है, किंतु जन्म पर कभी यांत्रिक विधि से नियंत्रण नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद ने कहा ऐसे जन्म के ऊपर आप नियंत्रण नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, प्रभुपाद से पूछें तो कैसे कर? तो प्रभुपाद एकदम श्लोक पढ़ते हैं, जैसे कि भगवत गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा गया है, क्या कहा गया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं चलो मौत को रोक सकते हो क्या, अरे नहीं मौत नहीं रुकेगा। बोला मौत नहीं रुकेगा तो जन्म कैसे रोकोगे, मौत नहीं रोक सकते तो जन्म कैसे रोक सकते हो? बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है। हम समझते हैं कि हम रोक लेंगे जन्म को, लेकिन रोक सकते हैं क्या? अब आदमी का जन्म रोक रहे हो, अब करुणा का जन्म रोक के दिखाओ। वो ले रहा है ना, जन्म ले रहा है ना, उसको रोकने का पता नहीं है, और बस वो जो बुद्धिमान है उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करने के पीछे लगे हुए भाई। उसका जन्म, ये एक जन्म का मानव का कम करो तो कुछ और बढ़ेगा ना कहीं से? इतनी सारी ये संसार में सृष्टि बढ़ रही है, कारण क्या है इसका? जब ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं इसलिए बढ़ रही है क्या? कुत्ती, कुत्ती कितने बच्चे देती है? कुतिया 7 बच्चे 8 देती है, और तो बढ़ नहीं रहे हैं, बढ़ रहे हैं क्या? और बिच्छू 108 बच्चे देता है, बढ़ रहे हैं क्या? हाँ, बिच्छू नहीं बढ़ रहा है, कुतिया नहीं बढ़ रही है, मानव ही बढ़ रहे हैं। कारण क्या है? कभी सोचा है किसने कारण क्या है? हाँ नहीं, अरे भाई सीधा कारण है, मानव जन्म मिला है भगवत धाम जाने के लिए। यहां से कोई भगवत धाम तो जा नहीं रहा है, और बाकी बेचारे दूसरे जुड़ने वाले कोरोना भी मरता मरता कहता है कि मेरा भी जान छूटे, मैं भी कभी आगे बढ़ूं, कब तक यहां रहूंगा? तो वो सब प्रोमोटर होके मानव बन रहे एक दिन, और मानव ऊपर नहीं जा रहा, इसलिए यहां भीड़ हो गई है। अरे भाई 5वीं क्लास में 50 लड़के थे, 1 पास हुआ, उन 50 फेल हुए, और चौथी के 50 के 50 पास होके ऊपर आ गए, तो दूसरे साल में कितने 99 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? भैया सीधा सा गणित है कि नहीं है? भाई सीधा गणित है ना, बाकी सारी यूनिया अपने आप प्रमोशन होता है, आगे आती है, वो क्लास तो आगे बढ़ जाएगी, और हम यहां से आगे ही नहीं बढ़े। एक महात्मा ने बड़ा अच्छा लिखा, देखो पेड़ नीचे से खाता है, हाँ जड़ से खाता है ऊपर जाता है, और आदमी ऊपर से खाता है नीचे जाता है। इसका मतलब आदमी से ऊपर जाने के लिए कुछ नहीं है, यहां से भगवत धाम जाओ, नहीं तो फिर नीचे ही जाना पड़ेगा, यहां से फिर और कोई रास्ता है नहीं ऊपर जाने का, नहीं है कि? ये सच है कि झूठ है? सच है। तो इसलिए ये संख्या बढ़ रही है। और रात वाली इस क्लास में एक बात बताई थी, किसी को याद है? ये सबसे ज्यादा संख्या एक मानव की बढ़ रही है, और दूसरी किसकी बढ़ रही है? मच्छर की। कोई मर रहा है मच्छर मारने से? मर रहा है। कितने हम कितने यंत्र बनाए मच्छर मारने के, मच्छर भगाने के, जितने यंत्र बनाए मच्छर खत्म हुए क्या? क्यों नहीं खत्म हुए? जब तक खून चूसने वाले लोग संसार में रहेंगे तब तक मच्छर खत्म नहीं होंगे। अरे भाई वो मर के कहां जाएंगे? उसकी दूसरी जूनी मच्छर की है सीधी सी, वहां भी खून चूसते, वहां भी खून चूसेंगे। आपको सुधारना है तो इंसान को खून चोसना बंद करो, मच्छर बंद हो जाएंगे, मैं लिख के देता हूं। तो मच्छर बंद करने का फार्मूला तो आता नहीं है, दवाई बनाते रहते हैं, तो उससे क्या होता है? तो यहां सृष्टि को प्रभुपाद जी कहते, देखो जब मृत्यु को बंद नहीं कर सकते हो, लोग जन्म को नियंत्रण करना चाहते हैं किंतु मृत्यु पर नियंत्रण करने में तो असमर्थ है, और यदि हम मृत्यु को नियंत्रण में नहीं कर सकते हैं तो जन्म को भी नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता। इससे प्रभुपाद जी सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में जन्म को कृत्रिम ढंग से नियंत्रण करना मृत्यु पर कृत्रिम नियंत्रण करने के से सुलभ नहीं है। अब मृत्यु को रोक नहीं सकते हो, मृत्यु को नहीं रोक सकते हो तो फिर जन्म को कैसे रोक सकते हो? ये जन्म होता रहेगा क्योंकि भगवान कह रहे हैं, तो इसको आप नहीं। वैदिक सभ्यता के अनुसार गर्भधान को धार्मिक नियमों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। वैदिक सभ्यता के अनुसार गर्भधान को धार्मिक नियमों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। प्रतिकूल का मतलब अगेंस्ट। और ये कहते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं, एक एकदम प्रभुपाद जी जब बोलते हैं तो शास्त्र का एकदम उदाहरण देते हैं, इसके बाद एकदम कहते हैं शास्त्र में क्या लिखा है। जैसे कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में क्या लिखा है, धर्मा विरुद्धो कामो अस्मि, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो काम में हूं। वो संतान उत्पत्ति करने का साधन जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, तो गर्भधान है धर्म के अनुकूल, और जो सामान्य दूसरे जितने भी है वो धर्म के प्रतिकूल है। तो धर्म के और भी भगवत गीता में कोई श्लोक है के काम के लिए, कंद्रपश्चास्मि, कहां है कंद्रप है ना, कामो क्या है, क्या शब्द क्या है, कंदरप, काम कामदेव, मेरी विभूति एक शब्द एक और भी है। चलो जल्द पर थोड़ा तात्पर्य लंबा है, पढ़ के पूरा करते हैं, समय हो रहा है, हो गया। जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वो भगवान का स्वरूप है, ये भगवान की विभूति है। लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए कि किस तरह संस्कारों के द्वारा वे उत्तम संतान उत्पन्न करें। गर्भ को कृत्रिम साधनों से नहीं रोका जा सकता, जाना चाहिए, क्योंकि उससे पशु सभ्यता का जन्म होता है। पशु सभ्यता का जन्म होता है का मतलब क्या है, बच्चे होंगे इंसान जैसे लेकिन काम होंगे पशु जैसे, और विशेष रूप से प्रभुपाद जी ने चार पशुओं का भागवत से वर्णन किया है। कौन से चार पशुओं का वर्णन किया है, ऊंट, गधा, कुत्ता, सुअर। ये चार प्रकार की सृष्टि पशु जैसे काम करने वालों की है। कुत्ता क्या करता है, किसी ने कुछ कुत्ते ने कुत्ते को कोई कहीं नियुक्त करता है कि ये महले का तुम मालिक हो, कोई भी जाएगा भौंकेगा बा 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 बा, क्यों भगो, क्यों करता है वो, समझता है यहां का मैं मालिक हूं। ऐसे दुनिया वाले कुत्ते की तरह किसी न किसी चीज को पकड़ के बैठेंगे ये मेरा है, और जो नजदीक आया उसको भौंकना शुरू कर। प्रभुपाद जी प्रवचन करते साधु संत जाए तो कुत्ता सबसे ज्यादा भौंकता है वो तो उसको मिल गया तो भौंकना चालू कर देगा। तो ये कुत्ते वाली जूनी हो गई। और सुअर का मतलब क्या, हलवा दो खाने के लिए, प्रसाद दो तो जाके बिस्टा ही खाएगा, तो उसका मतलब खान पान का कोई, जिसको खान पान का कोई भी डिफरेंस नहीं है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, वो सुअर जैसा जीवन है। अब बताओ ये खान पान क्या खा रहे थे हमारे चाइनीज भाई, खान पान कैसा था बताओ। अरे भाई जैसा खाओगे वैसा मन हो, जैसा अन्न तैसा मन, अन्न तो है नहीं यहाँ, यहाँ तो पता नहीं क्या, वो सांप खा रहे थे और चमगाड़ खा रहे थे, दोनों मिल हो गए, मिल गए और उनकी जीन मिक्स हो गई, उसमें से कोरोना वायरस पैदा हो गया। और जीते जी फ्राई पान के अंदर चूहे को ऐसे अंदर डालते हैं और फिर वो कूदता है और उनको मजा आता है कि अभी इसको आधा मरा हुआ, और मछली बेचारी ऐसे कर रही है उसको प्लेट के ऊपर रख के खाते हैं। तो इतनी जहां करुणा नहीं होगा, जहां करुणा नहीं होगी तो वहां करुणा ही आएगा करुणा नहीं तो करुणा कहां से आएगा। कल रात के सत्संग में एक उदाहरण दिया था, इसका इलाज क्या है। आप में से कोई आए थे कि नहीं आए थे, एक उदाहरण ये दिया था हमने, हंसने का उदाहरण था। जहाज में, जहाज आकाश के अंदर बहुत हिल रहा था तो सब लोग डर रहे थे कि गिरेगा, तो एक हमारा भगत जबरदस्ती हरे कृष्ण जपने लगा, तो सबने कहा तुम्हें डर नहीं लग रहा, बोला नहीं, बोला क्यों, बोला मैं जप कर रहा हूं ना, जहाज नहीं गिरेगा, बोला तुम्हारे जप से जहाज क्यों नहीं गिरेगा, अरे बोला गिरेगा तो मरेंगे ना, बोला हाँ, बोला मैं जप कर रहा हूं मरूंगा तो गोलोक भगवान को भेजना पड़ेगा और मैं इसके लायक नहीं हूं इसलिए जहाज नहीं गिरेगा और तो इसका मतलब यह है कि सब लोग अब हरे कृष्ण जोर जोर से जपना शुरू करो, क्योंकि फिर कोरोना आएगा तो वो मारेगा, मारेगा तो गोलोक जाना पड़ेगा और हम उसके लायक नहीं है इसलिए कोरोना कुछ नहीं करेगा इसलिए भगवान का नाम जोर जोर से जपना शुरू कर दो। और फिर प्रभुपाद ने तो कहा था कि जब कलकत्ता में प्लेग हुआ था तो भक्ति सिद्धांत के भक्तों ने जगह 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 जाकर नाम संकीर्तन किया था, तो कलकत्ता के अंदर से ये सारी आपदा चली गई थी। तो नाम संकीर्तन तो सर्व पाप को नाश करने वाला है और पाप के प्रणाम दुख को समन करने वाला, भगवान को प्रणाम है, तो ये बहुत सरल साधन है। जोर जोर से भगवान का नाम का कीर्तन करो तो करुणा आया तो मारेगा, मारेगा तो भगवान को वो भीड़ हो जाएगी वैकुंठ में, इसलिए करुणा के कुछ नहीं होने वाला। तो जोर जोर से भगवान के नाम का जप करना शुरू कर दीजिए। और तो गर्भ को कृत्रिम साधनों से रोका जाना से पशु सभ्यता पैदा होती है, जन्म होगा। धार्मिक नियमों का पालन करने वाला स्वतः गर्भ निरोध का पालन करता है, क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जानता है कि काम का दुष्प्रभाव विविध प्रकार के दुखों के रूप में होता है। बहुध दुख बहु दुख भाज, वो नियंत्रण में रहता है। इसका प्रभुपाद के अगर शिक्षित है, अगर उसको शिक्षा दी गई है, तो फिर वो संयम में रहेगा और दुरुपयोग नहीं करेगा अपने जनेंद्री का। जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं, वो अनियंत्रित यौन में लिप्त नहीं होता। अतः काम को या अधिक संतान के जन्म को बलपूर्वक रोका जाने के बजाय लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी गर्भ निरोध स्वतः होने लगेगा। यदि कोई आध्यात्मिक प्रगति करने पर तुल जाए तो वो तब तक संतान उत्पन्न नहीं करेगा जब तक वो उस संतान को भक्त न बना सके। अब प्रभुपाद जी कहते उसको संतान उत्पन्न करना चाहिए जो भक्त बना सके, और तब एकदम भागवत के पांचवें स्कंध का ऋषभ देव की शिक्षाओं में कहा गया है, पिता नरसस्यात, जब तक मनुष्य अपने संतान का मृत्यु से अर्थात जन्म मरण के चक्कर से बचा पाने में समर्थ न हो, तब तक उसे पिता नहीं होना चाहिए, बनना चाहिए। किंतु इसकी शिक्षा कहाँ दी जाती है, एकदम इसकी शिक्षा कहाँ दी जाती है? प्रभुपाद जी कहते हैं बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, कुत्ते बिल्लू की तरह गलियों में घूम रहे हैं, और आज कल हमारे बुद्धिमान लेकर कहते हैं एक से ज्यादा पैदा ही नहीं करना है, बस एक बहुत हो गया। अरे एक बहुत हो गया तो भी संसार में कम नहीं हो रहा है भाई, तुम एक करोगे दूसरे 10 करोगे फिर क्या करोगे? अच्छा एक होना और बदमाश 10 होना, बताओ कि किसका प्रगति, क्यों कौन सी चीज बढ़ेगी? बदमाश बढ़ेंगे संसार में, बदमाश बढ़ेंगे तो सृष्टि का नियम है, जब अधर्म बढ़ेगा, अधर्मी लोग बढ़ेंगे तो कोई ना कोई साधन तो आएगा उनको विनाश करने के लिए। तो अच्छे लोग क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? अच्छे लोग बढ़ेंगे तो अच्छा है, बुरे लोग बढ़ेंगे तो और समस्या ज्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं कहां यह शिक्षा दी जाती है। उत्तरदायी पिता किंतु और कुत्तों और बिल्लियों की तरह संतान नहीं उत्पन्न करता। इसका मतलब कोई तो करता है, उत्तरदायी पिता, जिस पिता को जिम्मेवारी होती है कि मेरे बच्चे मेरे को संभालने हैं, भगवत धाम ले जाना है, उसको छोड़ के बाकी कुत्ते बिल्लियों की तरह वो नहीं पैसा, तो बाकी कैसे करते हैं? कुत्ते बिल्लियों की तरह संतान पैदा कर रहे हैं। लोगों को गर्भ निरोध के कृत्रिम साधनों को अपनाने के स्थान पर उन्हें कृष्ण भावना अमृत का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि तभी वे अपने संतानों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझ सकेंगे। यदि ऐसे संतान उत्पन्न की जा सकें जो भक्त बने और जिन्हें जन्म मृत्यु के मार्ग से पृथक रहने की शिक्षा दी जा सके, मृत्यु संसार वर्तमानी वापस दुनिया में नहीं आए, तो गर्भ निरोध की कोई आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि संतान उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गर्भ निरोध की कृत्रिम विधियां निरर्थक हैं, कोई संतान उत्पन्न करे या नहीं, किंतु कुत्तों और बिल्लियों जैसे जनसंख्या के से मानव समाज कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जाने की आवश्यकता है, जिससे कुत्ते बिल्लियों की तरह संतान उत्पन्न करने के स्थान पर वे तपस्या करके भक्तों को जन्म दें, इससे उनके जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी का एक भाव दिख रहा है, वो भाव ये दिख रहा है कि इससे ऐसे लगता है कि आजकल जो कृष्ण भावना अमृत संघ में नव युवक, देखो आज कथा में आप सब आगे आगे बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं 25 साल 30 साल के, तो नव युवकों को प्रचार करने का मतलब इसमें से जो ब्रह्मचारी बने वो तो बहुत तपस्या कई जन्मों में करके आए हैं, तब उनको ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि वो इंद्रियों को संयम में रख सकें, लेकिन बाकी जो ग्रस्त आश्रम में जाएं उनको कृष्ण भावना अमृत की शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वो अपने इंद्रियों से कोई इसे ऐसे संयम में रखे और ऐसा संतान उत्पन्न करें विधि विधानों से जो भक्त बने। आगे वाले समय में सबसे ज्यादा अभाव भक्तों का संसार में होने वाला है, सबसे ज्यादा अभाव भक्तों का संसार में होने वाला है। कोई नाम का भक्त दिखेगा नहीं, मिलेगा नहीं, जो आपको भगवान के बारे में बताने वाला हो। भारत की जितनी भूमि है उसमें सबसे ज्यादा भूमि साधु संतों की है, दूसरे नंबर में राजा महाराजों की है। लेकिन वो साधु संतों की भूमि के पीछे कोई साधु संतों का उत्तराधिकारी नहीं है, ऐसी बेकार पड़ी है और लोग गलत नामों में लेके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब साधु संत संतान पैदा अगर नहीं करोगे तो भविष्य में इसका बड़ा अकाल हो जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्तों का संग दुर्लभ है, मिल जाए तो बहुत बड़ा भाग्य है। ये कृष्ण भावना अमृत संग भक्तों को बनाने के लिए, और भविष्य में आपकी जो तीसरी पीढ़ी आए वो अगर गर्भदान के द्वारा अच्छे भक्तों को संसार में लाए, तो चैतन्य महाप्रभु का ये कथन के नगर और ग्राम में सब जगह भगवान के नाम का कीर्तन होगा। ये प्रभुपाद जी ने इसको सत्य करके दिखाया और इसको सर्व प्रकार से इस पूरे विश्व के अंदर सत्य किया जा सकता है कि इस श्लोक के भाव को अगर नौजवान समझें और भविष्य में ग्रस्त में जाएं तो संतान भगवान को प्रार्थना करके उतना ही उत्पन्न करें जिनको भक्त बना सकें, और उसके बाद संयम से अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगा दें तो अपना जीवन सफल हो जाए। हरे कृष्ण। इसका मालिक है कीड़ा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, समय हो गया। कोई प्रश्न जिज्ञासा? हाँ भाई, ये है हथौड़ा मार महाराज। हरे कृष्णा।
जैसे अगर जैसे बहुत अच्छा बोल, बहुत अच्छा आनंद आ गया, एक सुखा लगता है, जैसे बोले दोस्त में जाके संसार करे और अच्छा सुंदर उत्पन्न करे, वो घोष में जाने के बाद
बहुत अच्छी बात कहते हैं। अगर एक गृहस्थी बनेगा तो एक भक्त पैदा करेगा, एक ब्रह्मचारी बनेगा तो हजारों भक्त पैदा करेगा। ये हमारा क्या नाम है हरा दास प्रभु कह रहे हैं। अब मेरा इसका उत्तर ये है, दूसरे हजार भक्त ब्रह्मचारी बनाएगा कोई पैदा करेगा तब के नहीं बाजार से लाएगा। भाई तुम पैदा करोगे, तुम भक्त बनाने जाओगे तो कोई पैदा करेगा उनको बनाओगे ना, और किसको बनाओगे? कुत्ते बिल्ली को बनाओगे? हाँ तो ऐसे ये कुछ और पैदा करेंगे तो एक ब्रह्मचारी और बना। ऐसे नारद जी साहब ब्रह्मचारी हो तो 10,000 बेटे दक्ष के भक्त बना दिए, लेकिन फिर लड़कियां बनाई तो उसको तो ब्रह्मचारी नहीं बना सकते, वो अपने आप सृष्टि बढ़ाई उन्होंने, संसार की सृष्टि तो लड़कियों से हुई, इसलिए लड़कियों का नमस्कार है, उसके बगैर ये सृष्टि बंद हो जाती। ब्रह्मा जी ने सब ब्रह्मचारी बना दिए और दक्ष से तो कोई सृष्टि नहीं हो रही थी, और 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, उसके बाद ऋषियों ने सृष्टि हुई तब ये सृष्टि दोबारा हुई। तो राजा जी का बहुत क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि एक ग्रस्त बनेगा कितने बच्चे पैदा करेगा, 4-5 एक ज्यादा से ज्यादा भक्त बनाएगा, एक ब्रह्मचारी बनाएगा तो हजारों भक्त बनाएगा, लेकिन फिर भी हजारों भक्त बनने के लिए बच्चे चाहिए, वो कोई तो ग्रस्त पैदा करेगा ना, तो दोनों की आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, विदाई गौर प्रेमानंदे।